हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांश के कमरे से बाहर निकलते ही सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी तरफ देखकर कहा, बॉस, आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो बॉडीगार्ड वेदांश का सबसे खास और काबिल बॉडीगार्ड था, जो अपने काम में बहुत अच्छा था और ऐसी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना जानता था, लेकिन वो भी टेंशन में लग रहा था। इसलिए उसकी बात सुनकर वेदांश भी टेंशन में आ गया और समझ गया कि जरूर कोई बड़ी बात है, नहीं तो सच में वो लोग छोटी मोटी बातों के लिए रात के इस वक्त उसे कभी परेशान नहीं करते। वेदांश ने एकदम सीरियस आवाज में पूछा, बताओ, अब तो डिस्टर्ब कर ही दिया है तुमने, आखिर ऐसा क्या हो गया इस वक्त और इमरजेंसी मतलब क्या, कोई खतरा है? वेदांश के इस सवाल पर बॉडीगार्ड ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। वेदांश के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए और उसके माथे पर बल पड़ गए। वो बॉडीगार्ड की तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। तभी बॉडीगार्ड ने उसे आगे पूरी बात बताना शुरू किया, सर, वो एक्चुअली हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में कोई गड़बड़ है, शायद कोई घर के अंदर घुस आया है और हमें पता नहीं चला, हो सकता है शायद वो आप पर हमला करने के लिए आया हो, आपके दुश्मनों में से कोई। वेदांश, जो पहले से ही अपने अलग मूड में था, बॉडीगार्ड की ये बात सुनते ही और खिसियाने लगा। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो, और फिर धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे घर में घुसकर मुझ पर हमला करने की सोच रहा है, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सबका इतना काम है, जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकालो, नहीं तो मैं तुम में से भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेदांश की बात सुनते ही सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और उसके पर्सनल बॉडीगार्ड एकदम घबरा गए और हर बढ़कर इधर उधर भागने लगे। तभी एक दूसरे बॉडीगार्ड ने तुरंत रिपोर्ट दी, बॉस, हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ लोग घर में घुस चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि वे कहाँ हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। उन लोगों ने शायद ये सब पहले से प्लान किया था, इसीलिए वो हमें इतनी आसानी से चकमा दे गए। वेदांश ने गुस्से में अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांध ली और फिर घूर कर उस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, और कोई तारीफ करना बच गया हो तो वो भी कर दो अभी मेरे सामने, दुश्मन की, और अगर वो इतना ही अच्छा है ना, तो उसे पकड़ने के बाद ना मैं उसे तुम लोगों की जॉब ऑफर कर दूंगा और तुम सबको कम से निकाल दूंगा, निकम्मे कहीं के, जाओ और उसे मेरे सामने लेकर आओ, जो कोई भी है, ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम सबको दुनिया से गायब कर दूंगा मैं। वेदांश ने तुरंत ही एक गन अपने हाथ में पकड़ ली और उसे लोड कर लिया। वो इधर उधर देखते हुए इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक बाहर से गोलियों की तेज आवाजें गूंजने लगीं। पूरे घर में गोलीबारी की ध्वनि फैल गई और उसकी सिक्योरिटी टीम के सारे सदस्य चौकन्ने हो गए। कुछ लोग तो घबराहट में इधर उधर भागने लगे, जबकि बाकी ने अपनी पोजीशन संभाल ली। वेदांश ने गुस्से से चीखते हुए कहा, सिक्योरिटी सिस्टम को तुरंत अलर्ट मोड पर डालो और सारे बुलेट प्रूफ दरवाजे खिड़कियों को बंद कर दो, किसी भी चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बॉडीगार्ड्स तेजी से उसके ऑर्डर का पालन करने लगे, लेकिन कुछ खिड़कियां और दरवाजे अब भी पूरी तरह बंद नहीं हो पाए थे। इन्हीं खुले रास्तों से कुछ नकाबपोश लोग घर के अंदर घुस आए। उनके हाथों में गन थी और उन्होंने वेदांश के आदमियों पर सीधा निशाना साध लिया। गोलियों की आवाजें और चीख पुकार से पूरा घर गूंज उठा था। सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावर काफी तेज थे और बेहद खतरनाक लग रहे थे। कुछ गार्ड्स घायल हो गए और बाकी के चेहरे पर चिंता और भाई के भाव साफ दिखने लगे। वेदांश, जो अब तक अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था, अपनी गन उठाकर सीधा हमलावरों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने एकदम सटीक निशाना साधते हुए गोली चलाई और दो नकाबपोश तुरंत जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन वेदांश का ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, उसे उन लोगों को सबक सिखाना था जिन्होंने उसके घर में घुसने की हिम्मत की थी। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स पूरी तरह से सतर्क थे और उसे कवर कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन इतनी तेजी से बिगड़ रही थी कि कुछ और नकाबपोश अंदर घुस चुके थे। चारों ओर गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं और घर का हर कोना जैसे जंग का मैदान बन गया था। वेदांश को भी समझ आ गया था कि उसका बॉडीगार्ड सही कह रहा था, जो कुछ भी हो रहा था वो सब पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। तभी अचानक वेदांश के चार बॉडीगार्ड्स ने घर के कोने में छिपे हुए एक नकाबपोश को दबोच लिया। वो व्यक्ति खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत अब काम नहीं आ रही थी। वो लड़खड़ाता हुआ उनके बीच फंस चुका था और वे उसे जमीन पर गिराए हुए थे। बॉस, इसे हमने पकड़ लिया है, एक बॉडीगार्ड ने जोर से कहा, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वेदांश ने गहरी नजरों से उस पकड़े गए नकाबपोश की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो बिना किसी देरी के उस आदमी की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी और ठोस थे, जैसे हर कदम के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा हो। वो नकाबपोश आदमी घबराया हुआ था, उसकी बॉडी लैंग्वेज से डर साफ दिखाई दे रहा था। वेदांश उसके पास पहुंचा, उसकी आंखों में सीधा देखा और फिर एक झटके से उसके चेहरे से मास्क खींच लिया। जैसे ही नकाबपोश का चेहरा सामने आया, वेदांश की आंखें चौड़ी हो गई, उसकी सांसें थम गईं और चेहरे पर गहरा आश्चर्य उभर आया। तुम? वेदांश के होठों से धीमी लेकिन स्तब्ध करने वाली आवाज निकली। वो इस शख्स को इस रूप में देखकर पूरी तरह से हैरान था। उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वेदांश ने बहुत हैरानी से कहा, तुषार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब तुमने किया है, तुमने मुझ पर हमला किया, ये सब तुम्हारे लोग हैं। तुम बेवकूफ हो क्या, या फिर जिंदा रहने से मन भर गया है आप तुम्हारा, इसलिए करने का ये रास्ता चुना है तुमने? आखिरी वाक्य बोलते हुए वेदांश का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। उसने सामने खड़े तुषार के बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए उसके बाल खींचे और उसका सिर पीछे की तरफ हो गया, लेकिन फिर भी उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। तुषार को इस वक्त काफी तेज दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह दर्द बर्दाश्त किया। शायद वो वेदांश के सामने अपना दर्द दिखाना नहीं चाहता था। अपने सिर को सीधा करते हुए बहुत ही मजबूती से वेदांश की आंखों में आंखें डालते हुए तुषार बोला, हाँ वेदांश ठाकुर, मैं। वैसे तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे दुश्मनों की तो वैसे भी कमी नहीं है, तो मैं अभी बस उनमें से एक हूँ। लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं था, तुमने मुझे मजबूर किया, तुमने खुद मुझे अपना दुश्मन बनाया, और शायद इसी तरह तुम अपने दुश्मन बनाते हो, और मैं बस अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला था। आज मैं तुम्हें जान से मार देता अगर तुम्हारी ये भाड़े की टट्टू। वो अपने बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वेदांश ने उसके चेहरे पर एक तेज थप्पड़ जड़ दिया और उंगली दिखाकर उसे वार्निंग देते हुए बोला, अपने लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा मैं, और तेरे जैसे बेवकूफों के मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुझे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा जो वेदांश ठाकुर से इस तरह सामने से दुश्मनी लेता है। और हिम्मत तो देखो, खुद मेरे घर में घुस आया मुझे मारने के लिए, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? तुषार ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तुझे मार भी देता अगर मुझे 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट और मिल जाता तो तू यहाँ मेरे सामने नहीं खड़ा होता, तेरी लाश पड़ी होती जमीन पर। उसकी आंखों में वेदांश को डर अभी भी नजर नहीं आ रहा था और वो ऐसी बातें कर रहा था, तो वेदांश ने भी हंसते हुए कहा, कुत्ता बिल्ली पालने चाहिए, लेकिन गलत फहमी नहीं जो तुमने पाल रखी है। तुम्हें क्या लगता है वेदांश ठाकुर कोई सड़क पर चलता हुआ शराबी, आवारा, नल्ला आदमी है जिसे तुम जैसा कोई भी आसानी से मार सकता है? और वैसे भी ऐसा क्या किया है मैंने जो तुम मेरी जान के दुश्मन बन गए ऐसे अचानक से? जहाँ तक मुझे याद है, हम बिजनेस पार्टनर थे और हमारे साथ में डील भी होने वाली थी। तुषार ने नफरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ था, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बड़े आदमी हो ना, तो भूल गए होगे। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। बिजनेस पार्टनर के अलावा तुमने खुद मुझे मजबूर किया था तुम्हारी बहन के साथ शादी करने के लिए, जबकि मैं तो तुम्हारी बहन को जानता तक नहीं था। लेकिन फिर भी शादी वाले दिन तुम्हारी बहन को पता नहीं क्या हुआ, तुमने ना मुझे बताया ठीक से और अचानक ही शादी तोड़ दी। तुम्हें पता है कितने लोग आए थे यहाँ पर, और उसके बाद हमारी कितनी इंसल्ट हुई, और हमारी कंपनी के साथ जितने भी लोग कोलैबोरेशन में थे उन सब ने अपने शेयर वापस ले लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, वो भी तुम्हारी वजह से, और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा और इन सब चीजों का एक एक करके हिसाब लूंगा। लेकिन इतना बोलते हुए वो रुक गया और अपनी बात पूरी करने से पहले वेदांश की तरफ देखने लगा। वेदांश काफी ज्यादा ध्यान से उसकी बात सुन रहा था और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिस दिन मिशिका ने सुसाइड करने की कोशिश की और उसकी तुषार से शादी होने वाली थी, वेदांश मिशिका को अस्पताल लेकर गया था, लेकिन उसने तुषार और उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था और ना ही उन लोगों पर इतना ध्यान दिया, क्योंकि उसे लगा था ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। टू बी कंटिन्यूड। आज का एक्शन से भरा हुआ एपिसोड कैसा लगा? वैसे वेदांश जैसे लोगों के तो अनगिनत दुश्मन होते ही रहते हैं, लेकिन हर कदम पर वो एक नया दुश्मन भी बनाता रहता है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या वेदांश और तुषार के बीच दुश्मनी जारी रहेगी, या फिर होगा इस दुश्मनी का अंत, या फिर दुश्मन का अंत? क्या देखना पसंद करेंगे आप लोग? और हाँ, हमारी अंबिका जी, वो कहाँ रह गई?